नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये ब्रह्मा कुमारीज की विशेष प्रस्तुति है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले लगभग 2 महीने से भी ज्यादा समय से हम हर दिन आपके साथ रूबरू बातचीत करने के लिए आते हैं। इस छोटी सी पहल की कोशिश यही रही है कि ये जो बदलाव का समय है, ये जो चैलेंजिंग टाइम्स है, टेस्टिंग टाइम्स है इंडीड, ऐसे समय में अगर हम एक दूसरे का सहारा बन सकें, एक दूसरे के लिए सपोर्ट दे सकें, अगर हम इमोशनल सपोर्ट दे सकें, स्पिरिचुअल गाइडेंस और विजडम ऑफर कर सकें, तो ये हमारी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश रहेगी। और आप सब लोगों को जितना यथासंभव हम ये ऑफर कर पाएंगे, हमारी कोशिश यही रही है। और इस कोशिश में आप सभी दोस्तों ने मिलकर बहुत अच्छा साथ निभाया है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप पूछते हैं, शेयर करते हैं और हमें अपना दोस्त मानते हैं। इस बात के हम बेहद खुश हैं और खुश नसीब समझते हैं अपने आप को। इस कोशिश में ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने, जिन्होंने अनेकों दशकों तक राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया है, स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में उतारा है, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व जुड़ेंगे। आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के सोशल सर्विसेज विंग, जो राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का एक विंग है, जो समाज सेवा का प्रभाग कहलाता है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के गुलबर्गा और उसके आसपास के सेवा केंद्रों के ये निदेशक हैं और बड़े ही प्रखर वक्ता, संस्कृत के प्राध्यापक रह चुके हैं और अनेकों दशकों तक इन्होंने राजयोग की साधना की है और हजारों लोगों ने इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को संयमित बनाया है और आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है। ये हमारा सौभाग्य कि आज भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। भाई जी, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हर दिन प्रोग्राम पे लाइव जुड़ते हैं और बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं। उन सभी दोस्तों के लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवालों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यहां पर लिखकर डाल सकते हैं, भले वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, और वहां से हम आपके कमेंट्स को लेंगे और भाई जी से आपके प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं, इफ यू जस्ट वांट टू शेयर कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई ख्याल है या आपके फीलिंग्स हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई शाउट आउट देना चाहते हैं, सो प्लीज ब्रिंग इट ऑन, और आपके शाउट आउट्स भी आप स्क्रीन पर ऐसे देख सकते हैं। चलिए, आज के पूरे कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं। हमारे साथ पहला प्रश्न अकरम उल खान का है। अकरम उल खान जी हमारे साथ YouTube से जुड़े हैं और वो कहते हैं कि मेरे आसपास के आत्माओं को खुश देखना चाहता हूं और उन आत्माओं की खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आई वॉन्ट टू सी देम हैप्पी, ऐसा कहते हैं। और अक्सर ये कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे आसपास के लोगों को हम खुश रख सकें, मगर ऐसा समय जहां पर लोग परेशान हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, ऐसे समय में हम लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं, अकरम उल पूछते हैं।
हाँ, नमस्ते अकरम भाई। आसपास के लोग खुश देखना चाहते हैं तो इसे सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यह है कि हम खुश में रहें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वाइब्रेशन एक चीज होती है, वाइब्रेट होते हैं। जैसे समझे सामने वाला खुश है और हम नाखुश चेहरा उसके सामने रखेंगे तो वो फिर मजबूर हो जाएगा नाखुश होने के लिए, या फील करेगा अंदर में ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि हमारा खुशनुमा चेहरा उन लोगों को भी खुश बना देता है, परंतु हमारी खुशी आंतरिक चाहिए, बाह्य नहीं चाहिए। खामखा हंसते हैं ना, वो उनको खुशी नहीं देगा, परंतु हमारे एक्ट, हमारी बोल, हमारा चरित्र उनको खुशी का अनुभव कराएगा। क्योंकि आज दुनिया में आप देखेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परेशानी नहीं है, अशांति नहीं है और डिप्रेशन नहीं है, दुखी है, और इन दिनों में तो ज्यादा दुखी है, आप जानते हैं। इसीलिए हमारा ये विचार अक्रम है कि दूसरा खुश होना, उसके पहले हम खुश होना चाहिए, हमारी खुशी उसको मिलती है। क्योंकि हम यदि समझिए, हम समझते हैं, हम बड़े हैं, हम पोजीशन में हैं, हम कुछ दान देना चाहते हैं, तो कहा जाता है खुशी का दान सबसे बड़ा दान होता है। जैसे माँ खुश होती है तो बच्चा देखेंगे आप कितना खुश नजर आता है, वो दुखी रोता रोता भी हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ की खुशी उसमें ट्रांसफर होती है। इसीलिए यहाँ भी हम समझते हैं कि हम जितना खुशी अपने में अनुभव करेंगे उतना दूसरों को खुशी दे सकेंगे, और हम कभी किसी के प्रति अशुभ न सोचे, अशुभ न बोले, अशुभ न सोचे। जैसे हमको कहा जाता है बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, परंतु हमारे इस स्कूल में ये हमको पढ़ाया जाता है कि बुरा मत सोचो, क्योंकि आजकल हमारी सोच का प्रभाव दूसरे को बहुत पड़ता है। इसीलिए मेरी ये राय है कि यदि हम दूसरे को खुश देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने अंदर खुशी लाएं, और हमारी खुशी आती है हमारे एक आध्यात्मिक ज्ञान से, रूहानी नॉलेज से। तो क्योंकि हम यही समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं, देह हैं, हम क्या कर सकते हैं, परंतु अब नई नॉलेज हमको मिल रही है, एक नई इल्म हमको मिल रही है कि हम रूह हैं, और रूह का जो ओरिजिनल नेचर है वो खुशनुमा है। तो इसीलिए हम खुश हैं तो जहां खुश है, ठीक है।
मैं समझता हूँ आक्रमण को उनका सवाल का जवाब मिल गया है, और बहुत सारे लोग हमें लगता है कि हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, हमें लगता है कि हम लोगों को खुश करते रहेंगे तो फिर हम खुश हो पाएंगे। बट आपने उस इक्वेशन को बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर आप खुश हैं तो फिर आप अपने आस पास खुशी फैला सकते हैं। जी, अगला प्रश्न हमारे साथ अभिषेक कुमार पूछते हैं। अभिषेक हमारे साथ YouTube पे लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, और वो पूछते हैं फियर फ्रॉम नेबरहुड हाउ टू ओवरकम एंड आई ऑल्सो फियर फ्रॉम साउंड प्लीज हेल्प, बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे आसपास जिस नेबरहुड में रहते हैं अगर वहां पर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो जिससे हमें डर लगता है, तो उसे हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि बहुत बार कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जिससे भी हमें डर लगने लगता है, तो ऐसे में इन चीजों से कैसे ओवरकम करें, प्लीज हेल्प, ऐसा अभिषेक कहते हैं।
अभिषेक भाई, पहली बात तो यह है कि आज सारी दुनिया भय के अंदर जी रही है, और वह भय लोग ये समझते हैं कि बाहरी दुनिया का है। नहीं, पर एक कमजोर इंसान को ही भय होता है, और यदि वो कमजोरी शारीरिक नहीं है, हम समझते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, बॉडी साउंड है तो माइंड भी साउंड होगा, परंतु हम इस स्कूल में ये जानते हैं कि साउंड माइंड होना चाहिए तो बॉडी ऑटोमेटिक साउंड होती है। इसीलिए समझिए एक सादी गाड़ी है और चलाने वाला ड्राइवर बड़ा चाणाक्ष है, स्किलफुल है, तो वो गाड़ी कैसी भी होगी चला लेगा। यदि वो ड्राइवर ठीक नहीं है तो फिर गाड़ी अच्छी भी होगी तो वो नहीं चला पाएगा। इसीलिए ये नया स्लोगन हमको मिलता है कि साउंड माइंड होगा तो बॉडी साउंड होगी, मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, एक बात। दूसरी बात यह कि हमको जो भय बाहर, हम समझते हैं बाहर से आता है, नहीं, मेरा जहां तक अनुभव है भय हमारा आंतरिक है, हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी है। इसीलिए ये अपने अंदर एक, जैसे आजकल बोलते हैं ना, एक बीमारी आती है परंतु जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है तो उसको बीमारी नहीं आती है, ऐसे ही ये जो इम्यूनिटी ऑफ सोल वो भी ठीक होनी चाहिए, आत्मा की, माना मेरे खुद की आत्मिक शक्ति बढ़नी चाहिए, और उसके लिए कोई भी हमने प्रयत्न कल तक नहीं किया। अब इस स्कूल में हमको ये ट्रेनिंग मिलती है कि हम अपने आप को, माना आत्मा को, माना स्वयं को कैसे हम सशक्त बनाएं, क्योंकि ऐसा माइंड को, मन को सशक्त बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मनः एव बंध मोक्षयो कारणम, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब ये मन क्या चीज है, इसके लिए शास्त्रवादी लोग, पंडित लोग, विद्वांस लोग बहुत लंबा चौड़ा आंसर देते हैं। हमारा सिंपल आंसर है मन और कुछ नहीं है, हमारी सोच। जितना हम सोच को बदलेंगे, समझ में स्ट्रांग होंगे, उतना ऑटोमेटिक हम दूसरे की सोच को बदल सकते हैं, परंतु बाहरी प्रभाव से भी बच सकते हैं, ठीक है।
आपने कहा कि मन को सोचने से ये चीज बदला जा सकता है। इस ऐसे ही एक मन से मिलता जुलता ही सवाल है। ये हमारे साथ YouTube से हमारे एक दोस्त जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि आई रियली फील गिल्टी। इनको गिल्टी फीलिंग बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं इस फीलिंग से कैसे उभरे। तो बहुत बार हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं किसी चीज से, कोई गलती हमने की है लाइफ में, तो उस फीलिंग से कैसे उभरे, गिल्ट से कैसे बाहर आए, पूछते हैं।
कौन है ये?
इन्होंने अपना नाम नहीं बताया भाई जी, यूट्यूब चैनल पे डायरेक्शनर नाम है इनका, बट कुछ और नाम होगा
जी। अच्छा, तो गिल्टी ये तो सबको होती है, क्योंकि हमने जो कर्म किए हुए हैं उसका एक अनुभव है। यदि हम देखिए, गिल्टी फील तब होता है मनुष्य को, बाहर में यदि बुरा किया भी नहीं होगा, परंतु अंदर कभी कभी विचारों में हम गंदगी भरे हुए होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा, मन स्वस्थ होगा तो गिल्टी फील नहीं होगी। माना संकल्प हमारे स्ट्रांग होंगे और हमने कभी किसी के प्रति बुराई नहीं सोची, नहीं की, क्योंकि करने के बाद दूसरा यदि कुछ बोलता है तो वो हमारे अंदर अनुभव होता है कि हाँ ये गलती मैंने की है, तो ये गिल्टी। परंतु हम यदि सोचें कि गलती हुई है ना, ठीक है, बेशरम होकर के उसको स्वीकार करेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। गिल्टी तभी फील होता है जब जब हमने गलती या तो सोची होगी फुल प्लेट में या तो की होगी। बिना कोई बुरा काम किए गिल्टी किसी को फील नहीं होती है, और किए हैं ना तो उसको स्वीकार कर लेते हैं एक बार, तो उस कारण से हम हल्के हो जाते हैं। जैसे लोग भगवान के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं ना, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, उसके सामने तो कबूल कर लेते हैं। दुनिया में कबूल करने में हमको शर्म आती है, परंतु कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। एक बार हमारे मन हल्का होता है, माना हमारे संकल्प हल्के हो जाते हैं और फिर हम कंफर्ट फील करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए गिल्टी आजकल किसी को अनुभव नहीं आती है जल्दी, आपको आई है तो बहुत बड़ी बात है, इसको स्वीकार कीजिए। कर्म किया हुआ है तो और एक बार मैं नहीं करूंगा, इस दृढ़ निश्चय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो गिल्टी कॉन्शियसनेस हमारे गायब होती जाए। ठीक
जी, मैं समझता हूँ आपने बहुत ही अच्छी बात कही है एक्सेप्टेंस के बारे में। बहुत बार हम गिल्टी तो फील करने लगते हैं, बट अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उससे उभरने के लिए वो बहुत बड़ा स्टेप होता है, और उस एक्सेप्टेंस के बाद हम स्लोली स्लोली बिल्ड करते जा सकते हैं उस चीज से बाहर आने के लिए, स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी उस एडवाइस के लिए। अगला प्रश्न, दो मैं समझता हूँ तीन हमारे दोस्तों का प्रश्न मिलता जुलता है और तीनों एंगर से रिलेटेड है। पहला मोनिका वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और मोनिका जी पूछते हैं कि बच्चों में गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। ये मोनिका जी का प्रश्न है, फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और दूसरा गौतम कांबले हमारे साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ ये आर्मी में या आर्म फोर्सेस में काम करते हैं। वो कहते हैं कि माय वाइफ इज नॉट हैप्पी, एनी टाइम शी बिकम्स एंग्री। वो कहते हैं कि उनकी वाइफ खुश नहीं होती है और बहुत उनको गुस्सा आता है, ऐसा गौतम जी का प्रश्न है। और मैं एक और दोस्त ने इसी से, नुपुर माथुर जी हमारे साथ हैं और वो भी यही प्रश्न पूछते हैं कि एंगर जो है इसे डील करने के बारे में उन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं कि वो कहते हैं व्हेन आई गेट टायर्ड आई फील एंगर ऑन अदर्स दैट दे आर नॉट हेल्पिंग, व्हाट टू डू बिकॉज़ आई वांट टू बी काम एंड हैप्पी। घर में खुद ही अकेले काम करते हैं, कोई और मदद नहीं करता काम करने के लिए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो बट मैं काम और हैप्पी रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, शांत रहना चाहती हूँ, क्या करूं, ऐसा पूछते हैं। तीनों के प्रश्न गुस्से से जुड़े हुए भाई जी।
जी जी, हमने कई वर्षों से गीता का अध्ययन किया, गीता के बारे में सुना, ये तो सही है, परंतु उसको कभी प्रैक्टिकल में अप्लाई करने की नहीं सोची, इसीलिए प्रश्न उद्भव होता है। क्योंकि गीता में देखिए स्पष्ट रूप में कहा गया है कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध लोभस्तथा, काम क्रोध और लोभ, और तस्मादेतत् त्रयम् तेजेत्, इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इसमें क्रोध है। अब ये क्रोध उसको ही आता है जो कमजोर कमजोर व्यक्ति होता है। देखिए, हमको क्रोध आता है तो सामान्य रीति से कोई तोड़ फोड़ होगी, गाली गलौज होगा, मारपीट होगी। वही क्रोध बदलता है एक सैनिक के पास, तो सैनिक को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। जो सैनिक होता है, योद्धा होता है, सोल्जर होता है, उसको क्रोध नहीं आता है। क्रोध आया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक शक्ति की जागृति चाहिए, और वह शक्ति है सहन शक्ति। सहन करना ये बहुत जरूरी है। जो सहन करता है वो श्रेष्ठ बन जाता है। आजकल दुनिया में सहन शक्ति नहीं है, बेटे में भी नहीं है, बाप में भी नहीं है, पत्नी में भी नहीं है, पति में भी नहीं है, और स्वयं में हम अनुभव करते हैं कि है नहीं। तो इसीलिए ये एक दिव्य गुण है, सहनशीलता। सहनशीलता को जितना हम अपनाएंगे, माना दूसरा समझे हमको मदद नहीं करता है, कोई बात नहीं, हम उसको मदद करने लग जाएंगे तो वो हमें मदद करेगा। और घर में जहां तक घर गृहस्थी की बात है, आजकल आप देखेंगे हरेक के संस्कार लोगों भिन्न रुचि है, हरेक की रुचि अलग अलग होती है, तो वो हमको एब्जॉर्ब करना चाहिए। जब तक उसको हम असिमिलेट नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। और हम ये निर्णय ले लें कि हमको खुश रहना है किसी भी हालत में, हमको सहन करना है। अब कोई कहे कि कहां तक हम सहन करें, कहां तक ये बोझ ढोएं, परंतु है ना, जिंदगी लंबी है, सफर लंबा है, इसीलिए एक दैवी गुण अपनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि ये गुण बाहर से नहीं आता है, ये गुण अंदर से ही एक्सप्लोर करना पड़ता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि बाहर से जो भी आता है आप देखेंगे वही आता है, नेगेटिविटी आती है। अब अंदर से जो हमको एक्सप्लोर करना है वो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। कोई भी बात को हम सकारात्मक लेंगे तो वो फिर सहन कर सकेंगे, और फिर हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। नहीं तो क्रोध आया तो उसका नतीजा क्या हुआ, चाहे वो क्रोध कंस का है या रावण का है या और किसी का है। अभी भी आप देखते हैं यहाँ हमारे इस वर्तमान समय में चाइना है, तो हमारे लोग टीवी में कितना बोलते हैं ये करो वो करो, यदि सैनिक वो करने लग जाएंगे तो दुनिया आग लग जाएगी। पर वो सहनशीलता है, पॉलिटिशियंस में भी सहनशीलता होती है जो ओहदे पर पोजीशन में होते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं, मैंने अनुभव किया कि हमारे पास, मुझे इसमें चलते 52 वर्ष हो गए, तो अब वो गुस्सा पहले जो हम लोगों को आता था, अभी वो गुस्सा हमारे से ऐसे निकल गया जैसे है नहीं। और लोगों को भी आश्चर्य होता है कि ये बिगड़ते क्यों नहीं। इसीलिए आप तीनों से मेरी राय है कि ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज, एक रूहानी विद्या जो हम सीख रहे हैं, इसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें। कभी कहा जाता है स्वल्पम अप्यस्य, यदि थोड़ा भी हम इसको ध्यान करेंगे तो बहुत सारा लाभ हमको होता है। न केवल मेरे को लाभ होता है, क्योंकि मैं यदि शांत रहूंगा, जैसे हमको सिखाया जाता है कि आत्मा का ओरिजिनल नेचर शांत है, तो जितना मैं शांति में रहूंगा, सहनशीलता ऑब्जर्व करूंगा, उतना सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ होगा। और फिर जो हमारे आसपास में वायुमंडल है, यह वायुमंडल भी एक तरह से हल्का होगा, और इस वायुमंडल के कारण से कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। जब कहा जाता है ना, क्रोध जिसके घर में है उसके हांडे भी सूख जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए हम थोड़ा क्रोध जीतने की कोशिश करने के बजाय, क्योंकि नेगेटिविटी जाती नहीं है, यदि हम पॉजिटिविटी डेवलप करेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली दब जाती है, ऐसा हमारी राय है। और मैं आशा करता हूं कि आप ये सहनशीलता को अपनाएंगे या इस स्पिरिचुअल वे में एक कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक
जी। बहुत शुक्रिया भाई जी उस एनकरेजमेंट के लिए। मैं समझता हूँ आपने ये जो बात कही कि भले बच्चे ही क्यों ना हो, बच्चों में भी अगर गुस्सा कंट्रोल करना है तो उनको भी कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीजें समझानी जरूरी है, उनके अंदर ये आदतें डालनी जरूरी है, जिससे वो भी मेडिटेशन करना सीखें, साइलेंस को प्रैक्टिस करना सीखें। अगर हम ये इनकलकेट कर देंगे, बचपन से आदत डालेंगे, तो शायद ये मैनेज करना आसान होता है। और जैसे
ऐसे भी बच्चे हमारे कार्बन कॉपी होते हैं जो हम करते हैं। जैसे कहा गया यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, हमारे पास सेंटर पर बोला जाता है कि जो बड़े हैं करते हैं उसको बच्चे फॉलो करते हैं। यदि हम अशांति में रहेंगे तो वो भी अशांत होंगे, तो हम यदि क्रोध में आवेश में नहीं आएंगे तो निश्चित ही वो भी शांत होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे।
जी अगले प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं भाई जी। अगला प्रश्न निर्मल जैन जी पूछते हैं, और निर्मल हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि आई गेट टायर्ड आफ्टर मेडिटेशन इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस, वाई? ये प्रश्न पूछते हैं। मैं समझता हूं निर्मल हमारे नए दोस्त हैं, जो आजकल लॉकडाउन में 3-4 महीने में लोगों ने नए नए मेडिटेशन करना शुरू किया है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेडिटेशन के साथ लोग, तो नए नए एक्सपीरियंसेस हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद उनको टायर्डनेस फील होता है, हैप्पीनेस की जगह पे खुशी नहीं महसूस होती, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा निर्मल जी पूछते हैं।
निर्मल जी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम आश्रम वाले सिर्फ मेडिटेशन बोलते हैं, हमारे ध्यान पर मेडिटेशन ही है, और लोग भी कहेंगे ये योगी लोग हैं। परंतु मेडिटेशन से यदि थकावट होती है तो मेरा जहां तक ख्याल है, अनुभव है, कि हमने मेडिटेशन ठीक ढंग से नहीं किया है। नहीं तो समझिए, जैसे हमारे पास रेडियो है, अभी इन दिनों में नहीं है, ट्यून करते ही गीत आते हैं, यदि नहीं करेंगे तो आवाज आ जाती है, कर्कशता आती है। ऐसे ही योग एक विद्या है और योग एक कला है। हमारी बुद्धि की जोड़, जैसे हम कहते हैं योग यूज टू कनेक्ट, योग माना कनेक्शन। अब वो कनेक्शन किससे हुआ यह हमको देखना है, योग कनेक्शन किससे हुआ। तो कनेक्शन यदि परमात्मा से होगा, या कनेक्शन यदि सकारात्मकता से होगा, या कनेक्शन यदि ज्ञान के भंडार से होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे में इनफ्लो होगा, मेरे अंदर आएगा। जैसे समझिए, अभी हमने बत्ती जलाई ना तो प्रकाश आएगा, यदि नहीं जलाई और मेहनत ही करते रहे तो थकावट आएगी। इसीलिए योग करने के पहले मैं कौन और मेरा कौन, ये दो का ज्ञान हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान है ना, ध्यान करेंगे, जैसे समझिए कोई ने कह दिया ओम नमः शिवाय बोलो, या कोई ने कह दिया ओम नमो भगवते नारायणाय बोलो, तो वो हमको न शिव मालूम है न नारायण मालूम है, इनके वेयर अबाउट हमारे को समझ में है ही नहीं निर्मल जी, परंतु कर रहे हैं। और यहाँ हमको हर चीज के ध्यान के लिए उसका उसकी हिस्ट्री बायोग्राफी सारी जाननी चाहिए। जब जानेंगे ना तब खुशी भी होगी और आनंद भी आएगा। और जिस कारण से हम योग करना चाहते हैं, लौकिक में जो ध्यान लगाते हैं वो कोई पैसे के लिए लगाएगा, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए लगाएगा, कोई नौकरी के लिए लगाएगा, कोई बच्चे के लिए लगाएगा, वो अलग चीज है। हम जो योग कहते हैं वो योग है आत्मा में बल भरने, वो योग है आत्मा में शक्ति भरने का, वो योग है आत्मा में आध्यात्मिकता की रस को भरने का, प्लस करने का। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि योग आप एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक दो का नहीं, आज करोड़ों व्यक्ति हैं जो ये राजयोग कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो उनको थकावट तो होती नहीं, वो तो बैठे रहते हैं घंटों। वो अलग बात है कि पुराने लोग सालों बैठ जाते थे वो हिमालय की घाटियों में, पर हम वो टाइम अभी नहीं है। हम कर्म करने वाले हैं, हमको कर्म करते हुए भी इस ध्यान में रहना है। जैसे कहा गया गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि, तो जो कर्म कर रहा है वो भी योग होना चाहिए, बैठक ही योग नहीं है, कर्म करते हुए भी योग में रहना है, माना ध्यान में रहना है, माना उस एक ईश्वर के कनेक्शन में रहना है। इसीलिए मेरी राय यह है कि ये मेडिटेशन को सही ढंग से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी थकावट दूर होगी, न केवल आपकी थकावट दूर होगी बल्कि आपके माध्यम से तेरे भाने सबका भला, बहुतों का भला हो सकता है। ऐसे भी आप निर्मल हैं तो अंदर में कोई कलमशता नहीं है तो स्वच्छ आत्मा उस परमात्मा से जल्दी ही योग साध सकती
है। जी अगला प्रश्न हमारे साथ सरिता जी पूछते हैं, सरिता सहगल नाम है इनका और ये यूट्यूब से लाइव जुड़े हैं और ये पूछते हैं, ओम शांति, मेरे हस्बैंड जब मेरे से नाराज होते हैं तो भोजन खाना छोड़ देते हैं जिससे मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, ग्लूकोज लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसे में क्या करें, ऐसा सरिता जी पूछते हैं।
अच्छा है सरिता जी, आपका नाम वंडरफुल है। सरति इति संसार, ये जो संसार है ना ये बहता रहता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यदि पति गुस्सा होता है और भोजन छोड़ देता है तो वो कोई बालक तो है नहीं, उसकी नाक पकड़ करके मुंह खोल करके खाना खिलाएंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि किसी भले हमारे संबंधी हैं, हमारे पति हैं और उनके साथ हमारा कंफर्टेबल रिलेशन होना जरूर चाहिए, इसीलिए यदि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे समझिए तो और ही उनमें बल आएगा, क्योंकि मेरा डिस्टर्बेंस उनको और भी डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, उससे फायदा भी कुछ नहीं होगा, ना आपको फायदा है ना उनको फायदा है, इसीलिए ये जरूरी है कि गृहस्थ जीवन में कुछ बातों के लिए परस्पर मेल जोल होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि हमको बाबा कहते हैं कई बार बच्चे ये संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिए ठीक चलने चाहिए, और फिर उनकी रुचि क्या है, किस बात से वो नाराज होते हैं वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के मानसिकता को जब तक हमारी समझ में नहीं आता है तो दोनों में तालमेल होना मुश्किल है। हो सकता जैसे समझिए एक टीवी खोलते हैं, एक चैनल आपको पसंद है एक उनको पसंद है, तो दोनों की पसंद एक होना मुश्किल है, कोई तो हारेगा ना। हमारी बड़ी दादी कहती थी समझो ऐसा होता है तो एक हार मानेगा तो वहां हारमोनी क्रिएट होगी, तो हमारे घर में सामंजस्य होना चाहिए। वो माताएं बहने माना पत्नी अच्छी तरह से कर सकते और उसी का नाम ही है देवी, तो देवी जो होती है ना वो हमेशा खुश रहती, चाहे भगत कुछ करे तो आप देवी हैं तो वो भगत हैं समझिए, और उनकी मर्जी क्या है वो हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और पॉजिटिविटी कि भाई ठीक हो ही जाएगा, क्या बड़ी बात है, ये हमारी बुद्धि में रहे। क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन कोई तात्पूर्तिक नहीं है, माना कि आज 86% डाइवोर्सेज बढ़ गए हैं, परंतु वो उससे क्या होने वाला है, आज देख एक पति छोड़े दूसरा पति लिया तीसरा पति, जीवन क्या है उसका मतलब ही नहीं है ना। इसीलिए हमारा जीवन अच्छा है, भारतीय पद्धति अच्छी है, डोली में आए थे हरती में जाएंगे, मैं समझता हूँ ये पिछड़ापन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की एक देन है। इसीलिए पति की मर्जी को समझ करके वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हर बात का तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन सुंदर होगा और दोनों का ही ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। ठीक है
जी, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, पूनम जी हमारे साथ जुड़े हैं और पूनम जी का प्रश्न है जी, ये भी एंगर से मिलता जुलता है, वो कहते हैं कि हाउ टू ओवरकम एंगर हैबिट, गुस्से की जो आदत है उसे कैसे ओवरकम करें। हालांकि आपने इसके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, बट इन्होंने एक चीज ऐड किया है, वो कहते हैं कि जब इफ थिंग्स डू नॉट गो योर वे, मैं जैसा चाहती हूं वैसा काम अगर नहीं हो तो मुझे गुस्सा आता है, ऐसा पूनम जी कहते हैं, इसके लिए गाइड करें प्लीज।
तो मैं पूनम जी अभी मैं कह रहा था कि एक ने कहा दूसरे ने माना, इससे क्या होगा हार्मनी होगी, और फिर मेरी बात सब माने ये कभी संभव नहीं है, हम कोई डिक्टेटर है नहीं, डिक्टेटर होता है ना तो वो फिर उसकी बात माननी होती नहीं मानेगा, वो शूट कर देगा, और यहाँ ऐसा हो नहीं सकता है, हमारा तो ये कंटिन्यूस लाइफ प्रोसेस है, मेरी बात कोई नहीं सुनता है मुझे गुस्सा आता है उससे क्या फायदा होगा, सामने वाले का भी नुकसान, संबंधों में बिगाड़ आ जाएगा ना। और संबंध बनते हैं बहुत मुश्किल से, टूटते हैं बहुत सरल, टूटने में देर नहीं लगती है, संबंध बनाने में देर लगती है। इसीलिए जितना हम सहन शक्ति को अपनाएंगे उतना हमारे संबंध सबके अच्छे हो। कोई हमारी बात नहीं सुनता है, भले न सुने, किसी की बात को हम मानते हैं कि किसी की बात को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो दो 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 मिनट के लिए हम उसको शांति का दान देंगे और हमारी शांति उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। और उसी समय मेरी बात को वो माने, ये नियम नहीं रखे, बाद में वो मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। जहां स्नेह होता है ना, जैसे वो कहते हैं आपसे मेरा इतना प्यार है कि मैं गर्दन काट करके रख सकता हूं, तो स्नेह के कारण होता है ना, प्यार के कारण होता है ना। ऐसे ही हमारे अंदर यदि स्नेह की भावना है तो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर उसका असर पड़ता है। और ऐसे भी क्रोध को कहा गया है कि ये एक महावैरी है, हमारा शत्रु है। क्रोध आता है तो दूसरे को हानि नहीं होती है, बल्कि मेरे को हानि होती है। तो इससे कोई कहते हैं ना, तू मेरे सामने आता है ना तो मेरे पेट में जैसे आग लगती है, तो आग लगेगी तो एल्सरेट हो जाएगा ना, बाद में वो कैंसर में चेंज हो जाएगा। आज लोगों को इतनी सारी गड़बड़ जो हो रही है बाहर के विश्व में, वो इसी अनबनपन से हो रही है या क्रोध से हो रही है। इसीलिए हम ये नहीं कहते आप क्रोध छोड़ दो, नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। आप क्रोध छोड़ने के स्थान पर यदि शांति अपनाते जाएंगे, सहनशीलता अपनाते जाएंगे, दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए रॉयल नहीं बल्कि एक स्नेही के नाते, एक मित्र के नाते बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस बात को वो समझने में और करने में बाध्य हो जाएगा। आज करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हर बात स्वीकार करते हैं, इनकी एक मत है। इसका एक ही कारण है कि एक इनसे ईश्वर से स्नेह है, दूसरा परिवार से स्नेह। ये परिवार जो दैवी परिवार है, डिवाइन फैमिली, हम हर कुछ त्याग कर सकता है ना मनुष्य। आज देखिए कितना इनका जीवन कितना त्यागमय है। ये त्याग इन्होंने क्यों किया? बोला भगवान ने या दादियों ने, बड़ी बहनों ने, ये बोलने सुनने का तात्पर्य वो इतना स्नेह से, प्यार से, प्रेम से बोलते हैं, समझा करके बोलते हैं। बिना समझाए बोलिए मत, समझा करके बोलिए, थोड़ा सहम करके बोलिए, थोड़ा शांति से बोलिए, तो सामने वाला व्यक्ति, मेरा विश्वास है कि आपकी बात को मना नहीं करेगा।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी, कि सिर्फ गुस्से को हमें हटाना नहीं है, सिर्फ गुस्सा दूर हो जाए ये नहीं सोचना है, बट साथ साथ शांति को अंदर भरते जाना है। सिर्फ कोई चीज निकालने से काम नहीं बनेगा, उसके लिए हमें पीस भी, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसका जो पॉजिटिव ओपन है, उसको अंदर भरने की आवश्यकता है, तब गुस्सा हम सही से डील कर पाएंगे। जब आप ये बातचीत कर ही रहे थे उसी समय पर आरती शर्मा जी भी हमसे यही सवाल पूछ रहे थे, गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे। मैं समझता हूं उनके प्रश्न का भी उत्तर मिल गया है। हमारे साथ ऐनुल अली हैं। अली जी का प्रश्न है, यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि एक साल से बीमार हूं, इसलिए बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रहा है, बहुत टेंशन में हूं, ऐसा ये लिखते हैं। अली नाम है इनका।
अनिल
अली, अली
अली साहब है। अरे वाह, अली कैसे डिप्रेशन में आ सकते हैं? अली तो अली है। देखिए, ये हमारे अली, हमारी जो संस्था है वो सिंध प्रदेश से निकली है, वहां पर झूलेलाल का बहुत गीत संगीत होता है, उसमें बीच में अली अली बोलते हैं। तो बीमारी है ये, शारीरिक है। यदि शारीरिक बीमारी मानसिकता में परिवर्तन हो जाएगी तो वो बहुत डेंजर है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। आज इसीलिए आप देखेंगे कोई, कई पढ़े लिखे हैं, कई बुद्धिजीवी हैं और मल्टी मिलियनर हैं, वो इसी दुख में सुसाइड कर रहे हैं। चाहे वो काफी डे का मालिक होगा या सुशांत होगा, या अभी हमारे पास दो एक IAS ऑफिसर्स ने, IPS ऑफिसर्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? ये दुख से, बीमारी से, परेशानी से, डिप्रेशन से। ये कोई दवा नहीं है आपके इसमें, ये मैं जानता हूं कि पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, परंतु ये एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है कि हम यदि ऐसे ही डिप्रेशन में आए, ऐसे शरीर छोड़ दिया, तो ये और भी आगे साथ बढ़ेगा। इसीलिए खुश रहिए और खुशी दूसरों को दीजिए। बीमारी आती है और बीमारी आई है तो वो जाएगी भी जरूर। हमारा सबका विश्वास है ये किसी कारण से, हमारे ही कर्मों से आती है, ये कोई अल्लाह का दिया हुआ तोहफा नहीं है बीमारी, हमारे कर्मों से। अब बाहर में लोग मानते हैं कि आजकल वायरस इफेक्ट है, मैं भी मानता हूँ वायरस, परंतु वायरस एक इफेक्ट किसको होता है, जो शारीरिक नहीं मानसिक रीति से वीक होता है, अशक्त होता है। इसीलिए मन को चंगा कीजिए, मन को श्रेष्ठ बनाइए। अब मन को मेरा तात्पर्य है अपनी विचार को, सोच को, संकल्पों को, थॉट्स को पावरफुल बनाइए और रोज पॉजिटिव थॉट्स पढ़िए, सुनिए, बोलिए, ताकि अपने अंदर के अशक्तता, वीकनेस, कमजोरी चली जाए। क्योंकि हमारे इसमें कहा जाता है बलहीन नभ्य आत्मा, ये जो आत्मा है, रूह है, ये कमजोर व्यक्ति के हाथ में नहीं आती है। इसीलिए सशक्त बनना जरूरी है। नायम आत्मा लभ्यो बलहीन, बलहीन नहीं बनना है। शारीरिक बलहीनता अलग बात, पर मानसिक बलहीनता, अशक्तता, कमजोरी नहीं आने देना चाहिए। उसके लिए एक अच्छे संघ की आवश्यकता है, एक अच्छे साथी की आवश्यकता है, और वह साथी ऊपर वाले से अच्छा और कौन हो सकता है। ऊपर वाला कभी हमारे प्रति अशुभ नहीं सोचता है, न कभी वो हमारे को मरने की राय देता है, क्योंकि ऊपर वाला कहते हैं जियो और दूसरे को भी जीने का रास्ता बताओ। ऐसे अशक्तता मत फील कीजिए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या करूं, क्यों हुआ, या अल्लाह ने ऐसा क्यों बख्शा। नहीं, वो नहीं बख्शता है, बल्कि ये हमारा हिसाब किताब होता है, इसको हंसी हंसी से चुटकू कर लेते हैं, नहीं तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। हाय हाय करेंगे ना तो दुख मल्टीप्लाई हो जाता है, बीमारी मल्टीप्लाई हो जाती है 10 दिन में कम। आज देखिए, मेरा पूरा विश्वास है जितना लोग कोरोना में मर रहे हैं ना, बीमारी से नहीं मर रहे हैं, हाइबत से मर रहे हैं, भय से मर रहे हैं, ये क्या हो गया। तो इसीलिए आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए कि आज जो दिन है वो कल नहीं रहेगा, और ये भी नहीं सोचिए कि पता नहीं कल क्या था, और नहीं कल अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा विश्वास रख के रहेंगे ना तो डिप्रेशन चला जाए। और भी कहीं आपके आसपास हमारा ब्रह्म कुमारी का केंद्र होगा तो आप जरूर विजिट कीजिए
जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को बताया कि हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर बल भरना जरूरी है। शारीरिक बल अलग है, अगर हम मेंटली इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम बेहतर तरीके से और फेस कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि हम लगभग 40 मिनट के करीब पहुंच चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास और कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यहां पर अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, भले वो फेसबुक पे भेजें या यूट्यूब पे भेजें। आपके प्रश्नों को हम, आज प्रेम भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम भाई साहब से इन प्रश्नों का उत्तर लेंगे, और जहां पर क्वेश्चन सिमिलर होते हैं तो मैं उन क्वेश्चन को एक साथ जोड़कर पूछने की कोशिश करता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले सकें। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रश्न है जो प्राइवेट नेचर के हैं, जहां पर आपको लगता है कि जहां आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, और फिर भी कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं socialmedia@brahmakumaris.com पर, और वहां पर हम प्रश्न लेंगे आपके, बट आपके नाम को हम प्राइवेट रखेंगे, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न हमारे साथ अंजना चौधरी जी पूछते हैं, और अंजना जी का प्रश्न है, वो कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, माई डॉटर इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड इज वेरी रूड विथ मी एंड डज नॉट लाइक टू लिसन टू एनी एडवाइस फ्रॉम मी। शी इज हाइपर एक्टिव एंड कैनॉट सिट फॉर सम टाइम, लैक्स कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा अंजना जी पूछते हैं, भाई साहब अगर आप इसका उत्तर देना चाहें। मैं समझता हूँ भाई जी के वीडियो ट्रांसमिशन में थोड़ी सी डिले हम महसूस कर रहे हैं। जब तक हम भाई जी से वापस कनेक्ट हो पाए तब तक मैं कुछ और दोस्तों को कमेंट्स पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने एप्रिसिएशंस लिखे हैं और हर दिन आप लोग लिखते हैं और उसमें से मैं सारी चीजें पढ़ नहीं पाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले सकें, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो सब कुछ हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा देते हैं ताकि आप स्क्रीन पर इन चीजों को देख सकें। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं तो उन सजेशंस को भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे इस ईमेल एड्रेस पर जो है socialmedia@brahmakumaris.com पर। कल हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी जहां पर मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर रहा था कि हम हर दिन ये बी द चेंज प्रोग्राम करते हैं। हर दिन शाम को 6 से 7 के बीच में एक घंटे का प्रोग्राम होता है और कभी कभार हम इस एक घंटे से ज्यादा भी आगे चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में कुछ बदलाव चाहिए या फिर आपको कुछ स्पेशल चीजें चाहिए या इसके टाइमिंग में कोई फेरबदल चाहिए तो आप वो भी चीजें हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके हम कार्यक्रम में बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं आपके टाइमलाइन पर। हमारे साथ प्रेम सिंह भाई जी वापस लौट आए हैं तो भाई जी से मैं अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं जो अंजलि चौधरी जी ने पूछा था। भाई जी, अंजलि चौधरी जी हमसे ये बात पूछ रहे थे, क्षमा करें अंजना नाम है इनका, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं कि उनकी डॉटर 11 साल की है और वो बहुत रूढ़ व्यवहार करती है और वो कोई भी चीज सुनना पसंद नहीं करती, कोई भी एडवाइस मेरे से लेना नहीं पसंद करती। शी इज हाइपर एक्टिव एंड कैनॉट सिट फॉर सम टाइम, किसी भी एक जगह पर बैठने के लिए वो तैयार नहीं होते और कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है। 11 साल की बच्ची है तो अंजना जी चाहते हैं कि क्या करें उनके साथ, ऐसा पूछते हैं।
अंजना जी कर क्या सकते हैं, अंजना आपका नाम है जो वो बच्ची है, ये बच्चा होता तो मैं कहता था हनुमान है क्योंकि अंजना कला बच्चा हनुमान होता है तो हनुमान एक तरफ बैठता नहीं है, नॉटी होता है और सबको तंग करता है, ऐसा दिखाया गया है शास्त्रों में। अब बात यह है कि ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनके जो संस्कार हैं वो हम लौकिक में या भक्ति मार्ग में भी समझ नहीं पाते हैं आत्माओं के संस्कार क्या होते हैं, पर हम इस ज्ञान में चलते हैं ना तो हमको ये पता है कि हम जो यहाँ हैं वर्तमान में हमारे पीछे पास्ट हमारा बहुत लंबा है और वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनता है। इसीलिए उस बच्ची के जो संस्कार हैं वो आपके मेल इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसकी अपनी समझ है और वह एक तरफ नहीं बैठती है और आपकी बात नहीं सुनती है और इसके लिए आप यदि व्यग्र होते हैं तो वो व्यग्रता उसको और ही चंचल बना देती है। मैंने देखा है शुरू में हमारे पास एक माता आती थी, वो योग में बैठती थी ध्यान में तो बच्ची आकर के उसके ऊपर बहुत तंग करती थी, वो फिर भी हलती नहीं थी, श्याम माता बहुत स्थिर होकर के बैठती थी तो वो धीरे धीरे बच्ची में परिवर्तन आया और वो एकदम बेचे की समझी, उसको भी लगा कि मेरी माँ की तरह मुझे बैठना है। यदि वो जब व्यग्र हो जाती है आपकी बात नहीं सुनती है तो उसको आप छोड़ दीजिए। एक बार किसी को बोला जाता है, 2 बार किसी को बोला जाता है, 3 बार मगर वो नहीं सुनते हैं तो आप सुनाना बंद कर देंगे और उसके जितने भी हैबिट्स है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें फिर मैं कहूंगा कि इसमें हमारी सहन शक्ति बहुत जरूरी है, बहुत काम करती है और जितना हम शांति से बर्ताव करेंगे उसमें परिवर्तन आप जरूर देखेंगे क्योंकि मेरी शांति उसमें ट्रांसफर होगी। जैसे मैं क्रोधित होता हूं तो मेरा क्रोध सामने वाले पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, ये नियम है। जहां बुराई ट्रांसफर होती है वहां अच्छाई भी ट्रांसफर होनी चाहिए। आज जैसे हम लोगों के अंदर अच्छाई ट्रांसफर हो रही है, इसका कारण क्या है कि सामने हमारे, हम कहते हैं हम परमपिता परमात्मा के सामने हैं तो उनकी सारी अच्छाइयां हमारे अंदर परिवर्तन हमें आ रही हैं। ऐसे ही यदि आप अंजना बहन धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे कि मैं शांति में रहूं और शांत रहूं वो फिर उसको शांति देगी। मेरा पक्का विश्वास है कि वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उसके संस्कार हम नहीं जानते हैं अंदर में उसके क्या है, क्यों वो विग्रता उग्रता जैसी भी है, तो वो उसके अपोजिट में यदि मैं शांति से सहनशीलता से व्यवहार करूं और उसको स्नेह दूं, प्यार दूं, चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर, इसके लिए फिर थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट हमारे जीवन में आना चाहिए। वो आएगा ना तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि सामने वाला परिवर्तन होता है। इसीलिए इस बृहद परिवार में ब्रह्मा कुमारी के हमने कई ऐसे संस्कार वाले व्यक्तियों को देखा, परंतु धीरे 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 उनके संस्कार बदल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि सुधारने जब समझते हैं ना, मैं माँ हूं, मेरी बात इसको सुननी चाहिए, इसमें सुधार आना चाहिए, पर वो जो सोच है ना, वो सोच में थोड़ा सा मनस्ताप है, मेरी बात समझते होंगे आप, मानसिक ताप है ना, वो ताप मन ज्वर मन बुखार मन जो होता है ना पॉजिटिव नहीं है, न होने से फिर उसमें परिवर्तन को समय लग जाता है। यदि मैं ताप के बजाय शांति अपना लो, प्यार अपना लो, स्नेह में क्या नहीं परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए स्नेह की दृष्टि, एक माँ होने के नाते यदि आप उसको स्नेह की दृष्टि देंगे, शांति से प्यार से उसको बोलेंगे, उसके साथ कभी भी क्रोध से व्यवहार नहीं करेंगे, तो मेरा विश्वास है, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि उसमें परिवर्तन आएगा, मगर समय लगेगा, क्योंकि उसके वो ओरिजिनल संस्कार, उन संस्कारों को परिवर्तन करने में कोई साइकोलॉजिस्ट भी मदद नहीं कर सकता, मेरा गारंटी है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ज्यादा आपको वो सारे को भौतिक साधन बताएंगे, नहीं काम करते हैं भौतिक साधन, ये मानसिक साधन ही काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, योग दृष्टि रखिए, शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखिए, उसके प्रति शुभ सोचिए, ये लड़की ऐसी है, मेरी बातें ही नहीं सुनती है, वो क्या गंदे गंदे बातें बोलते हैं ना, तो उसके अंदर और ही वो ज्यादा पनपता है वो उसका व्यवहार। इसीलिए हम यदि उसके विरुद्ध में बच्चे तुम बहुत अच्छी है बहुत मीठी है ऐसा ऐसा उससे व्यवहार करेंगे, तो मैं समझता हूँ आप सक्सेसफुल सोल्व होंगे
जी। एक और प्रश्न है भाई जी हमारे साथ, जहां पर इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, बट ये प्रश्न पूछते हैं कि समटाइम्स इट हैपन्स वी डू सम वर्क एंड अदर्स सी इट एंड डू द सेम एंड गेट सक्सेस अर्ली फ्रॉम अस, सो वी थिंक दैट वी शुडंट टेल एनीवन एंड हाइड इट फ्रॉम अदर्स। वो कहते हैं कि बहुत बार जो हम काम करते हैं उस काम को देख कर कोई और जल्दी सक्सेस ले लेता है, और इसकी वजह से मेरे को ये ख्याल आता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे छुपा के रखना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वो सही है क्या, हमें छुपा के रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, ऐसा पूछते हैं।
नहीं, मैं समझता हूं इनके प्रश्न का ये भी आशय हो सकता है कि जो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं
जी,
परंतु एक साथ कर रहे हैं परंतु उसने सक्सेस पहले पा ली और मैं थोड़ा पिछड़ गया, ऐसा मैं समझता हूँ। और
हाँ, मुझे देखकर वो काम कर लेते हैं और उनको जल्दी सक्सेस मिल जाता है मेरे काम से। हाँ, वो जी
हाँ, तो इसीलिए देखकर करते हैं तो ये बात हो गई ना कि मेरे से ज्यादा उसमें इंटेलिजेंस है, समझ है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर कार्य ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, और छुपाने से कोई बात अच्छी बन नहीं सकती, ओपनली होंगे ऐसे। आप बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है तो ये अपने आप में लैब में ऐसे कीजिए, नहीं, हम ओपन माइंड है, ओपन है, कोई अच्छा कर लेता है मेरे से पहले कर लेता है तो ये बात अच्छी है ना, इसमें बुरी क्या है, वो सक्सेस पा लेगा यदि उसके मन में रहेगा कि मैंने इसे कॉपी करके सक्सेस पाई है, तो उसके अंदर एक तरफ गिल्टी कॉन्शियस जरूर रहेगा, और यदि मेरा देख करके वो पास हो गया तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरे से वो आगे गया। और ये भी एक जिंदगी में सोचना चाहिए कि मैं किसी को आगे रखूं तो समझिए कि मैं आगे हूं। जैसे बाप आज अनपढ़ है, वो रिक्शा चलाता है, ठेले पर चाय बेचता है, और उसका बेटा आज IAS ऑफिसर, तो क्या उसको दुख होगा क्या बाप को? नहीं होगा ना, नहीं होगा दुख, और ही खुशी में। वो आप कहेंगे वो अपना बेटा है इसीलिए उसको खुशी होती है, नहीं। इसमें हमारे पास कहा जाता है अयम निजः परो वेति गणना लजपुचेत शासन, ये मेरा है ये दूसरे का है, ये क्षुल्लक बुद्धि लोगों का विचार है। विशाल हृदय क्या सोचते हैं, वो ब्रॉड माइंडेड लोग क्या सोचते हैं कि ये सारी दुनिया मेरा परिवार है, इसीलिए छुपाने की बात नहीं है। बाकी हमारी IQ बढ़नी चाहिए, जितनी हम IQ बढ़ाएंगे, और IQ बढ़ने का एक साधन है शांति में रहना। अब शांति कोई पैसिव नहीं है हमारे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में सिखाई जाती है वो एक्टिव पीस है। हम सब बहुत एक्टिव है, कोई भी कार्य हम छोड़ते, हमारी पढ़ाई लिखाई हमने नहीं छोड़ी, गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ा, नौकरी नहीं छोड़ी, धंधा व्यापार नहीं छोड़ा, हम सब करते हैं, परंतु शांति में रह कर। जैसे कहा गया गीता में योगस्थ पुरु कर्माणि, तुम जो भी कर्म करते हो वो योग में रह के करो। और ये भी कहा गया है कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कार्य में रहते हुए भी आप संसिद्धि को प्राप्त कर सकते, सिद्धि आपकी है पर करने वाले आप हो, आपको ही करना है। तो ये ध्यान पे रहे कि मैं करूंगा मैं पाऊंगा, मेरा देख करके कोई और करके सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसकी होशियारी ज्यादा हो गई ना, हमने तो होशियारी नहीं दी उसको, है ना। दो एकम दो चार बोलने के पहले वो चार बोल गया, बोल गया तो मेरे से प्रवीण हो गया ना, ठीक है ना?
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी, कि बहुत बार हम इसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि कोई मेरे से सीख रहा है तो इस बात की खुशी होनी चाहिए, और देखना चाहिए कि सामने वाले में इंटेलिजेंस है, कोई स्किल है जिसकी वजह से ये मेरे से बेहतर कर पा रहा है। आपने वो एप्रिसिएशन हमको सिखाया। एक और प्रश्न हमारे साथ है यूट्यूब से, हमारे साथ नीमा तमांग जुड़ी है। नीमा जी का प्रश्न है, मुझे सपने खूब आते हैं, मैं क्या करूं, प्लीज गाइड करें, ऐसा कहते हैं। रात को स्वप्न ज्यादा आना, ड्रीम्स ज्यादा आना, इससे गाइडेंस चाहते हैं नीमा।
उनका नाम सब क्या है बताया?
नीमा नाम है भाई,
नीमा बहन। नीमा बहन, बात यह है कि सपना रात में आता है। हमारी हम आत्माओं की या मनुष्यों की तीन स्थितियां होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रा अवस्था। एक और अवस्था है जिसको हमारे योगी जीवन में माना जाता है तुरेगा अवस्था। तो ये बाहर के लोग, सामान्य जन सामान्य के पहुंच तक नहीं आता है ऐसा समझा गया कल तक, परंतु हम आज अनुभव करते हैं कि वो भी स्थिति प्राप्त होती है। उसके पीछे थोड़ा सा आध्यात्मिक पुरुषार्थ चाहिए। बाकी स्वप्न, जैसे एक बार कहा गया, जो जन्मजात अंधा है उसको कभी स्वप्न नहीं आते, आपको पता होना चाहिए। बर्थ से जो ब्लाइंड होता है ना उसको स्वप्न नहीं आते, क्योंकि उसने दुनिया देखी ही नहीं है कि हरी है कि पीली है कि नीली है कैसी है। इसीलिए स्वप्न अर्धचेतन अवस्था है। एक ने कहा, मेरे स्वप्न में एक गधा आया, उसको सींग थे। अब गधे को सींग नहीं होते हैं, और उसने स्वप्न में देख लिया कि गधे को सींग है। तो उससे पूछा गया कि गधे को सींग है ना, तो है तुमने गधा देखा है? हाँ देखा है। और ये सींग जो तुमने देखे वो कैसे थे? तो उसने कहा 12 सिंगी, जो हरिण होता है ना डीर, उसके 12 सिंगी वाला होता है। तो कहा वो देखा है? हाँ वो देखा है। तो इसने क्या स्वप्न क्या हुआ कि इधर से गधा लिया, इधर से वो हिरण के सींग उसके ऊपर जोड़ दिए। ये स्वप्न होता है, मैं ऐसा मानता हूं। और कई बार कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे अंतर्निहित होती हैं, माना सबकॉन्शियस एरा में हिडन होती हैं, वो भी कभी कभी बाहर आ जाती है। कुछ होती हैं अंदर में, क्योंकि हम एक चैतन्य आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। हमारे अंदर हमारा पास्ट भी है जो हम नहीं जानते हैं, वो पास्ट कभी कभी स्वप्न में, माना अर्धचेतन अवस्था में, माना इधर हम जागृत भी नहीं है, इधर नींद में भी नहीं है। नींद में स्वप्न नहीं आते हैं, आप समझ लीजिए पक्का। कोई भी साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे ना, साइकोलॉजिस्ट आपको डाइजापम ये नाइट्रावेट्स देके सुला देगा, परंतु नींद में सपने नहीं आते हैं। और जागृत अवस्था में जो देखते हैं उसको साक्षात्कार बोला जाता है। ये जो स्वप्न आते हैं अर्ध चेतन अवस्था में आते हैं। तो यदि कोई अच्छी तरह से सारा दिन काम कर करके और भोजन इत्यादि ठीक रख करके पॉजिटिव थिंकिंग किया हुआ हो, थोड़ा सा आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति आस्था रख करके मेडिटेशन करता हुआ होगा तो उसकी नींद गाढ़ी होगी, साउंड साइलेंस स्लीप होगी और वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए स्वप्न आते हैं, घबराइए मत, सपन कोई अलग नहीं है, हमारे अंदर के ही विचारों का चित्र आता है सबकॉन्शियस एरा में। तो उसको भगाने की कोई कोशिश करेंगे संभव नहीं है, उससे अच्छा है कि हम अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल लोग, आप मुझे पता नहीं है आपका क्या हाल है, आजकल लोग लेट नाइट तक वीडियोस देखते रहते हैं, नाटक सिनेमा देखते रहते हैं, तो वो ही कभी अलग अलग रूप लेकर के सपने में आ जाते हैं। यदि कुछ समय पहले हम कुछ अच्छा सा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, सोचेंगे, तो वो बातें फिर रिपीट होंगी सपनों में, वो कम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसा आप करने से सक्सेस पा सकेंगे।
अच्छी बात आपने बताया है जी, ये जो बात आप अभी बता रहे थे, हमारे एक और दोस्त विवेक जी भी स्वप्न से जुड़ी ही बात पूछ रहे थे कि स्वप्न और लाइफ के बीच में कनेक्शन क्या है। आपने उस चीज का भी उत्तर दे ही दिया है इसी उत्तर में। अब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं और प्रश्न ले सकूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के प्रश्न बाकी हैं, हेमा जी का प्रश्न बाकी है और भी कई दोस्त हैं जिन्होंने आज सवाल पूछे, उनका सवाल मैं नहीं ले पाया, श्रुति जी का प्रश्न बाकी है। दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लूं, और जो प्रश्न आज मैं नहीं ले पाऊंगा उनके लिए समय की भी सीमा होती है, और कल कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को हम अगले मास्टर ऑफ मेडिटेशन के साथ कल वीकेंड पे चर्चा कर सकते हैं। बट आप सभी दोस्तों ने आज सवाल पूछा, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल किए और बहुत सारे लोगों ने फीडबैक लिखा है, अप्रिसिएशन लिखा है, उन सभी लोगों के लिए दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और आप सभी की तरफ से मैं प्रेम सिंह भाई जी का धन्यवाद करता हूं कि भाई जी आज हमारे साथ जुड़े, खास गुलबर्गा से कर्नाटका से हमारे साथ जुड़े। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए।
सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सुना और हम समझते हैं इस पर सोच करेंगे, क्योंकि ये जो सुनना होता है ना, सुन करके उसको छोड़ नहीं देंगे, इन्होंने क्या बोला, इनके जीवन के अनुभव हमारे लिए काम में आ सकते हैं, ये सोच जरूरी है
जी। भाई जी मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 4-5 मिनट के लिए आप हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी दोस्तों को मेडिटेशन कराएं, और आपके सानिध्य में मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हम सभी करना चाहते हैं
जी। हम यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ओपन आई मेडिटेशन करते, क्योंकि ये संसार दुखी है, अशांत है, रोगी है इन दिनों में, तो इन सब को क्या चाहिए, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ विचार, आत्मिक शक्ति, ऐसी सोच हमारे अंदर लाना, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन। हम जहां भी हैं जैसे भी हैं थोड़ा सीधे बैठ जाएंगे ताकि हम एकाग्रता कर सकें, और ये जो शरीर है इसको कहा जाता है शरीरम तु रथम विद्धि, कि हमारा शरीर रथ है, इस रथ के हम सारथी हैं, और इसमें मन है, आत्मा में बुद्धि है और समझ है। हम अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं, जितनी समझ हमारी बढ़ेगी ऑटोमेटिक हमारे विचार सुंदर होंगे, हमारी सोच सुंदर होगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, और श्रेष्ठ कर्म होने के कारण से उसका फल भी श्रेष्ठ होगा और हम चाहते भी यही हैं कि हमारे कर्मों का फल श्रेष्ठ हो। उसके लिए हमारे स्वभाव को बदलना होगा क्योंकि आज हमारा स्वभाव देहाभिमान का है, जातीयता का है। उससे अलग हट करके हम अपने आप को एक चैतन्य शक्ति आत्मा समझे, इसका अनुभव करें। हम नश्वर देह नहीं, देह नश्वर, देह विनाशी है, आत्मा नश्वर है, उसका नाश नहीं होता है। वही मैं हूं। गीता रामायण महाभारत हमने बहुत सुना है पर अब हमको समझ चाहिए कि ये जो भी है मैं आत्मा के कारण है, मुझ आत्मा के कारण। इसीलिए आत्मा मैं ही हूं, मेरी आत्मा नहीं, और मैं आत्मा शांति शांति शांति। ओम शांति।